प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। व्रजवधू वर्गेण, ये जो व्रजवधुओं का वर्ग है, गोपियों का वर्ग, इन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, उनकी भक्ति की, उपासना की, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे कौन सी बात है गोपियों के कृष्ण प्रेम में जिसकी वजह से उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में बताया है, आश्लिष्य वापादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इस प्रार्थना में गोपियों के भाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। गोपियों ने कहा है कि हे कृष्ण,
आप हर अवस्था में हमारे प्राणनाथ हैं, चाहे आप हमें स्वीकार करें या आप हमें टुकराएं, आप हमारे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें।
गुरु गिर गया है
श्री कृष्ण का व्यवहार हमसे अनुकूल हो प्रतिकूल हो,
फिर भी हमारी सेवा, हमारा प्रेम वो जारी रहेगा। ये सच्चा प्रेम है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें हम कोई शर्त नहीं रखते हैं हमारे प्रेम के लिए। ये दुनिया में देखा जाता है कि अगर कभी कोई तथाकथित प्रेम के संबंध में कोई बाधा आ जाती है, कोई प्रतिकूल व्यवहार होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे को छोड़ देता है। लेकिन गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ उनका प्रेम है। इसमें कोई शर्त नहीं है, हर अवस्था में, हर समय वो भगवान श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं, कभी उस सेवा को त्यागते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ है, अर्थात अकाम है, इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है उस प्रेम में, और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता है। स्वार्थ का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी संबंध में, किसी भी कार्य में, हम निजी, हमारी जो निजी प्रसन्नता की अपेक्षा करते हैं, तो उसको स्वार्थ कहते हैं। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है, वो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी नहीं चाहते हैं, वो अपने सुख दुख के विचार किए बिना श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इसको वास्तव में अकाम कहते हैं। मायावादी लोगों का कथन है कि जीव को इच्छा रहित होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जीव तो कोई पत्थर नहीं है। जहां प्राण है, जहां जीव है, वहां इच्छा तो होना ही है। परंतु श्री जीव गोस्वामी ने परिभाषा दी है कि वास्तव में अकाम होना,
इसका क्या मतलब है? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम। जब हम परम पुरुष श्री कृष्ण के सुख को परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम, भगवान कृष्ण के सुख को अपना सुख मानते हैं, इसको अकाम कहते हैं। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए तो हम प्रसन्न हैं, अगर कृष्ण दुखी हुए तो हम दुखी हैं। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में, उनके सुख में हमारा सुख, और इससे स्वतंत्र, इससे भिन्न हमारा कोई सुख नहीं है। ये जब भावना आ जाती है तो इसको वास्तव में अकाम कहते हैं। तो ऐसे अकाम भाव के शिरोमणि
या के सबसे ऊंचे शिखर का प्रदर्शन गोपियों ने किया, इसलिए उनको सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ प्रेमी। और गोपियों में से तो सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो सबसे ऊंचे माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे मधुर हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, इनमें प्रविष्ट होना तो दूर की बात है। तो क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाएं सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये इतने उदार हैं कि इसके लिए कई और लाखों लाखों भक्तों की आवश्यकता होती है। राधा कृष्ण की लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की सहायता करने के लिए कई गोपियां होती हैं। गोलोक वृंदावन में अनगिनत गोपियां हैं जो श्रीमती राधा रानी की सहायता करती हैं और राधा कृष्ण लीला के रस को बढ़ाते हैं, उसका पोषण करते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि 300 करोड़ गोपियां हैं। वैसे देखा जाए तो अनगिनत है, क्योंकि भगवान के धाम में तो कोई किसी भी चीज की गणना नहीं हो सकती है। तो ये अनगिनत गोपियां जो हैं, ये राधा कृष्ण की सेवा में सहायता करती हैं।
तो हम चैतन्य चरितामृत से कुछ पढ़ना चाहेंगे, थोड़े बहुत श्लोक। ये चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का संवाद है, और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं राधा कृष्ण की लीला के बारे में और इन लीलाओं में गोपियों का क्या महत्व है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 8वां अध्याय है, श्लोक संख्या 201 से आगे बढ़ते हुए। राधा कृष्ण लीला अति गुढ़तर, दास्य वात्सल्य विभावे न होए गोचर। राधा कृष्ण लीला अति गूढ़तर, बहुत गूढ़ है, ये बहुत गुह्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। दास्य वात्सल्य आदि भावे ना होए गोचर। तो ये राधा कृष्ण लीला क्या है, अगर इसको समझना है अच्छी तरह से, तो ये दास्य वात्सल्य आदि इन भावों से समझा नहीं जा सकता इसको। सब एक सखी गणेर इहा अधिकार, सखी होते होई ए लीला लविस्तार। केवल सखी गणों को ये अधिकार है इन लीलाओं को समझने के लिए, सखी होते होय ए लीला विस्तार। और गोपियों के माध्यम से ही इन राधा कृष्ण की लीलाओं का विस्तार हो सकता है। केवल गोपियां हैं जो लीलाओं को समझ सकते हैं और आगे चल के इन लीलाओं का विस्तार कर सकते हैं। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादाय। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है। जब तक गोपियां उपस्थित नहीं हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं का पोषण नहीं हो सकता है। गोपियों के इन लीलाओं में भाग लेने से श्री कृष्ण की लीलाओं का राधा रानी के साथ पोषण होता है, स्वाद बढ़ता है, वो और भी मधुर हो जाता है। सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादाय। तो केवल सखी हैं जो इन लीलाओं का विस्तार करते हैं और इन लीलाओं का स्वाद लेते हैं। सखी बिना लीलाए अनिर नहि गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति। सखी बिना ए लीलाए अनिर नहि गति। सखियों के इन गोपियों के सिवाय और कोई भी इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। सखी भावे जे तारे करे अनुगति। तो जो श्री कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा
उनके भाव में, सखियों के पदचिन्हों में करता है, उनके भाव में करता है, वो भी ऐसे राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाए के अर नहीं का उपाय। तो ऐसा भक्त जो कि सखियों के गोपियों के भाव में श्री राधा कृष्ण की सेवा करता है, वही मात्र राधा कृष्ण की कुंज सेवा का अधिकारी हो जाता है। से साध्य पाए थे आर नाह का उपाय। इसके अलावा इस तत्व को, राधा कृष्ण लीला के तत्व को समझने के लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और फिर रामानंद राय एक श्लोक बताते हैं जिसको आगे चल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में बताया है। विभुर अपि सुख रूप स्वप्रकाशोभिभाव क्षण अपि नहि राधा कृष्ण यो यारते स्वाह प्रवहति रस पुष्टिं चित विभूतिर एवेशः श्रयति न पदम आसाम कह सखीनाम रसज्ञः। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह स्व प्रकाश है, स्वयं प्रकाशमान है, और विभु अपि सुख रूप है। विभु मतलब भगवान श्री कृष्ण, सुख रूप मतलब वो मूर्तिमान सुख है, सुख के मूर्तिमान स्वरूप है राधा कृष्ण की लीलाएं। वो असीमित है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी प्रवहति रस पुष्टिम चित विभूति एवेशः श्रयति न पदम आसाम कह सखी नाम रसत्य। सखियों के बिना इन लीलाओं की पुष्टि नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की जो लीलाएं हैं वो गोपियों के बिना अपूर्ण हैं। हालांकि राधा कृष्ण लीलाएं सर्वशक्तिमान हैं, मूर्तिमान सुख के रूप हैं और स्वयं प्रकाशमान है, फिर भी गोपियों के बिना वो अपूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक शक्तियों के बिना अपूर्ण हैं। और इसलिए जब तक कि हम इन गोपियों के शरण में नहीं जाते, उनके पदचिन्हों में नहीं चलते हैं, तब तक हम राधा कृष्ण के सानिध्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होना चाहता है परंतु गोपियों के शरण में नहीं जाता। अर्थात गोपियों के शरण में जाने से ही राधा कृष्ण के लीलाओं में हम प्रविष्ट हो सकते हैं। आगे रामानंद राय कहते हैं, सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन कृष्ण सह निज लीलाय नाहि सखीर मन। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन। सखी जो गोपियां हैं उनके स्वभाव के बारे में ये अकथ्य कथन है। ये कथन है जिसको, जिसका कथा करना मुश्किल है, जिसको समझना, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है, अकथ्य कथन। कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखेर मन। और ये अकथ्य कथन क्या है? ये है कि गोपियां जो है निज लीलाए नाही सखेर मन, कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो खुद रमण नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोपियां कृष्ण से रमण करके खुद सुख पाना चाहती हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या उनका उद्देश्य है? अगर खुद सुख नहीं प्राप्त करना चाहती हैं तो गोपियां क्या चाहती हैं? कृष्ण सह राधिकार लीलाए जे कराए निज सुख होते ताटे कोटि सुख पाए। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए। कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को वह संभव करती हैं। निज सुख होते ताटे कोटि सुख पाए। निज सुख होते मतलब कि वो अपने सुख की अपेक्षा वो राधा रानी और कृष्ण का सानिध्य देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर कोटि सुख पाए। अगर कोई गोपी सोचती है कि मैं स्वयं श्री कृष्ण के साथ में जाऊं और रमण करूं, लीला करूं,
तो उसे कोटि गुना ज्यादा सुख गोपी को मिलता है जब वो राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। इस प्रकार से गोपियों का भाव है, इसलिए रामानंद राय कहते हैं ये अकथ्य कथन है। गोपियों का भाव स्वार्थी नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के साथ लीला करना चाहती हूं, मैं श्री कृष्ण के साथ सुख प्राप्त करना चाहती हूं। उनका भाव है कि कैसे हम श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के पास ले जाएं, कैसे श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को और मधुर बनाएं, और भी इसका मिठास हम बढ़ाएं। तो ये है गोपियों का स्थान। ये गोपियां जो है कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। श्रीमती राधा रानी की काया विभु है, श्रीमती राधा रानी की निजी आध्यात्मिक देह के विस्तार है, कई हैं इनके सुंदर सुंदर नाम हैं गोपियों के, और उनके अलग अलग सेवाएं हैं जिनमें वो दक्ष हैं। इन सेवाओं का विस्तार गोलोक वृंदावन में होता है, विभाजन भी होता है, और इन असीमित गोपियों में, असंख्य गोपियों में 8 प्रमुख माने जाते हैं। ये है अष्ट सखी। आप में से जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर में गए हैं, आपने राधा माधव और अष्ट सखियों को एक साथ में देखा होगा। ये अष्ट सखी हैं। तो 8 सखियों के नाम क्या हैं? आप बताइए एक एक करके, अष्ट सखियों के नाम, जो 8 प्रमुख गोपियां हैं जो श्रीमती राधा रानी की सहायता करती हैं। पहले ललिता सखी, विशाखा, चित्रा देवी, चंद्रावली नहीं अरे ऐसा मत बोलिए आप, चंपक लता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, कौन रह गए, और इंदुलेखा। इंदुलेखा तो ये 8 सखियां हुई, अष्ट सखी, जो श्रीमती राधा रानी के प्रमुख सखियों में से हैं। चंद्रावली तो कॉम्पिटिटर है राधा रानी, वो तो प्रतिद्वंद्वी हैं, तो उनका नाम तो इनमें नहीं ले सकते हैं। उनका रूप भी श्रीमती राधा रानी के रूप के समान ही है, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम में इनका नंबर सबसे ऊंचा है इन 8 का। और श्री राधा कृष्ण के दिव्य आनंद की वृद्धि करने के लिए वो कभी कभी पक्षपात करते हैं। कभी ये सखियां जो है कृष्ण का पक्ष लेती हैं और राधा रानी को डांटती हैं, कभी कभी श्रीमती राधा रानी का पक्ष लेती हैं और कृष्ण को डांटती हैं। तो इस प्रकार के दिव्य राजनीति बहुत चलते हैं वहां, दिव्य लीलाओं को और भी मधुर बनाने के लिए। तो इन अष्ट सखियों के जो अलग अलग गुण हैं, दिव्य गुण हैं, इनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण गुणोदेश दीपिका में की है। तो आज ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है, तो राधा कृष्ण गुणोदेश दीपिका से संक्षेप में श्रीमती ललिता देवी के गुणों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। वैसे ललिता देवी अष्ट सखियों की भी उनमें से प्रमुख हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें से। उनकी माता का नाम है शारदी देवी, उनके पिता का नाम है विशोक गोप, उनके पति का नाम है भैरव गोप। ये गोपियां जो हैं सबके पति हैं, क्योंकि ये परकीय रस का स्वाद बढ़ाते हैं। वास्तव में ये सब जो है गोलोक वृंदावन में जो भी है, ये राधा कृष्ण के माधुर्य रस की वृद्धि करने के लिए है। तो इसीलिए हालांकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं, लेकिन गोलोक में उनके भी पति हैं अभिमन्यु। तो इस प्रकार से ये परकीय रस का स्वाद और भी बढ़ता है। तो भैरव गोप ललिता सखी के पति हैं, और ये भैरव गोप गोवर्धन मल्ल के मित्र हैं। गोवर्धन मल्ल मतलब चंद्रावली के पिता पति हैं, शायद चंद्रावली के पति हैं। तो ललिता देवी उनकी शरीर की कांति है गोरोचन के समान। गोरोचन मतलब जैसे गोमूत्र से जो एक के रंग का धातु आता है, गोमूत्र के रंग का धातु, उस तरह उनका रंग है बिजली के समान। और उनका जो वस्त्र है शिखी पिच्छ मोर पंख के समान उनके वस्त्र हैं। और उनका जो कुंज है वो भी बिजली के समान है रंग उसका, और उसमें तरह तरह के रत्न और मणियों से वो कुंज सुशोभित है। उनकी विशेष सेवा वो है, वो तांबूल और कर्पूर अर्पण करते हैं करती हैं, साथ साथ में वो फूल सेवा करने में बहुत दक्ष हैं, विशेष करके फूलों की माला बनाना और फूलों के लिए फूलों को सजाना, तरह तरह के राधा कृष्ण के लीलाओं के जो स्थान है कुंज हैं इत्यादि उनके निवास स्थान हैं, उनको वो फूलों से बहुत सुंदर सुंदर ढंग से सजाती हैं। उनकी जो नित्य आयु है वो है 14 साल 8 महीने और 27 दिन, इसलिए वो सबसे वरिष्ठ गोपी हैं, राधा रानी से भी वरिष्ठ हैं कृष्ण की गोपियों में से, बलराम की गोपियां तो वो और वरिष्ठ हैं। और उनका भाव है खंडित, खंडित भाव। खंडित भाव मतलब जब कोई प्रेमिका अपने प्रेम को डांटती है तो ये भाव इसको खंडित कहते हैं, लेकिन ललिता देवी अपनी ओर से नहीं करती है। जब राधा कृष्ण के मिलन में देरी हो जाती है तब वो इस भाव को प्रकट करती है। और उनका भाव है वाम प्रखर। वाम प्रखर मतलब जो एक विपरीत भाव होता है और गर्म स्वभाव का, जो गर्म स्वभाव होता है जब कभी गुस्सा रुष्ट हो जाती है वो, और विशेष करके जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं कि ऐसा करो तो बिल्कुल उसका उल्टा करती है, विपरीत करती है। और जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ कुछ झगड़ती हैं, घमंड के भाव में आकर गोपियां कुछ श्री कृष्ण से कह देती हैं, कुछ तुम्हें हो जाता है गोपियों कृष्ण के बीच में, तो गोपियों के पक्ष में श्रीमती ललिता देवी सबसे आगे है कृष्ण के साथ झगड़ा करने के लिए। और कभी कभी जब गुस्सा हो जाती है तो श्री कृष्ण का बहुत अपमान कर देती है, और ऐसे जब अपमान करती है तो उनके मुख में एक प्रकार का विकार आ जाता है गुस्से की वजह से, तो इसलिए उनका स्वभाव ऐसे कभी कभी उत्तेजित हो जाती है। तो ये सारे भाव जो है ये गोलोक वृंदावन में है, लेकिन अपने शुद्ध रूप में। उनका जो सबसे प्रिय वाद्य है वो वीणा है, वीणा बजाती है। और उनका सबसे प्रिय राग है राग भैरव कलिंगदन। उनकी 8 सखियां हैं जो उनके वर्ग में हैं, जो उनकी सहायता करती हैं, और उनके नाम है रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्ररेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी और कल्पिनी। और साथ साथ उनकी कई और मंजरी हैं जो सखियों के असिस्टेंट होते हैं। वैसे उनकी मंजरियों में से रूप मंजरी प्रमुख हैं, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी हैं, और हम सब रूपानुग हैं गौड़ीय संप्रदाय में। तो हम सब श्री रूप मंजरी के पदचिन्हों में चलते हैं, और हम सब ललिता देवी के वर्ग में हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो। इसलिए ललिता देवी, ललिता सखी की कृपा को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललिता देवी और रूप मंजरी के वर्ग में होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे तो राधा कृष्ण की सेवा ऐसे प्राप्त करेंगे इस दासानुदास भावना में। पूर्णमासी की सहायता करते हुए ललिता देवी राधा कृष्ण की लीलाओं की व्यवस्था करती है, व्यवस्थापन करती है, मैनेजमेंट सब करती है। राधा कृष्ण को कैसे मिलाना चाहिए, उनकी लीलाओं को और कैसे मधुर बनाना चाहिए, इस प्रकार से श्रीमती ललिता देवी के स्वभाव का वर्णन है। कई सुंदर लीलाएं भी हुई हैं यहाँ पास में राधा कुंड के पास ललिता कुंड है। जब एक बार ललिता देवी ने सोचा कि यहाँ 68 तीर्थ स्थान यहाँ आने चाहिए, जिनसे कि कोई भी व्यक्ति अगर 6 प्रकार की हत्या करता है तो उससे मुक्त हो जाए। 6 प्रकार की हत्या यानी किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना, आत्महत्या करना, गो हत्या करना, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या मतलब पेट में जो बच्चा होता है अबॉर्शन, गर्भपात करना, भ्रूण हत्या ये करना, कृमि हत्या करना इत्यादि, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या करना। तो 6 प्रकार से की हत्या जो करते हैं उनको भी इन बड़े पापों से मुक्त होना है तो वो ललिता कुंड में स्नान कर सकते हैं। इसलिए ललिता देवी ने अपने कुंड को बनाया जिसमें 68 तीर्थ स्थान वहां पर प्रकट हुए। तो जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया तो उस समय उन्होंने सोचा, गोपियों ने कहा कि आपने गो हत्या किया है। तो कृष्ण ने कहा कि अरे ये तो असुर था, अरिष्टासुर, ये असुर था, केवल उसने बैल का रूप धारण किया लेकिन है तो असुर। तो मैंने इस असुर का वध किया तो कोई गलती नहीं की मैंने, ये तो पाप नहीं है। लेकिन गोपियां सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं जो भी है लेकिन ये गो हत्या है इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने जाकर ललिता कुंड में स्नान किया और स्नान करके फिर वो वापस राधा रानी के पास और गोपियों के पास आए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर राधा रानी के पास जाना है, राधा कृष्ण लीला में प्रविष्ट होना है, तो कृष्ण को भी श्रीमती ललिता देवी की कृपा की आवश्यकता होती है। वो भी ललिता देवी की अनुमति लेकर उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके फिर आगे राधा रानी के पास जाती है। और फिर जब राधा रानी के पास श्री कृष्ण आए स्नान करके, सबने पूछा कि गोहत्या का प्रायश्चित हुआ या नहीं हुआ। कहा हुआ, ललिता कुंड में मैंने स्नान किया, तो ऐसा स्नान करने से भला प्रायश्चित कैसे हुआ। तुमने कहा 64 तीर्थ स्थान है इस ललिता कुंड में, तो 68। तो फिर गोपियों ने कहा कि हम कैसे मान सकते हैं कि 68 यहां पर तीर्थ स्थान है। तब श्री कृष्ण ने आह्वान किया, सारे 68 जो तीर्थ स्थान है वो वहां पर प्रकट हुए। आगे चल के राधा कुंड इत्यादि की लीला है जो बहुलाष्टमी के समय हम सब सुनेंगे। तो ललिता कुंड और मोहन कुंड ये दोनों जो है राधा कुंड के आविर्भाव के जो तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ललिता कुंड में भी इसका भी बहुत महात्म्य है राधा कृष्ण की लीला में। तो ललिता देवी ने राधा कुंड और श्याम कुंड का जल जो है ललिता कुंड में रख दिया और फिर बीच का जो भाग है वो टूट गया और राधा कुंड का जल भी, श्याम कुंड का जल भी ललिता कुंड में आ गया। ललिता सखी गौर लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसा आप जानते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनके सेक्रेटरी थे। डायरेक्ट कोई भी चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकता था। अगर कोई कुछ लिखना चाहता था, कुछ कोई पंक्ति कोई श्लोक की रचना करना चाहता था, तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाया जाता था और फिर आगे अगर वो कहते कि ठीक है इसमें कोई रसाभास नहीं है तो फिर वो आगे चैतन्य महाप्रभु के पास देते पढ़ने के लिए। ये भी कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई गौर लीला में। और क्योंकि ललिता सखी राधा रानी के साथ हमेशा रहती हैं इसलिए उनका नाम है अनुराधा, जो राधा रानी के पीछे हैं हमेशा। तो अनुराधा भी ललिता सखी का और एक नाम है। तो जब राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई गौर लीला में तो ललिता देवी के पीछे पीछे गदाधर पंडित के अंदर प्रविष्ट हुई। इसलिए श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि गदाधर पंडित राधा रानी और ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि रामानंद राय भी ललिता सखी के अवतार हैं, कभी अर्जुन पांडव अर्जुन और अर्जुन सखा के भी अवतार हैं। तो ऐसे कई बातें वैष्णव शास्त्रों में बताई जाती हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर अष्टकम की रचना की है, जिसको हम आज विभास राग में कहने का गाने का प्रयास करेंगे। तो आप सबके आनंद के लिए, श्रीमती ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए आज हम ये सब गाने का प्रयास करेंगे। कृपया ये आप सबने बांटिएगा, थोड़े बहुत पीछे आगे इसका अभ्यास करने का ज्यादा समय हमें नहीं मिला, बहुत ही जल्दी में हम आए रहा हूं। अगर कम पड़ जाए तो माता जी में भी पीछे दीजिए, ओके सर, और पीछे यहाँ इस तरफ भी जो बैठे हैं भक्त यहाँ भी थोड़ा कीजिए सर, वहीं पर खत्म मत कर दीजिए। तो अगर कम पड़ जाए तो कृपया दो तीन भक्तों में, तीन चार भक्तों में शेयर कीजिएगा। तो ललिताष्टकम ये जो आखिरी पंक्ति है, आखिरी लाइन है, देवीं गुणैः सुललिताम ललिताम नमामि, मैं ललिता देवी ललिता सखी के चरणों में नमन करता हूं जो कि दिव्य गुणों से संपन्न है। तो हम आखिरी लाइन से चालू करेंगे। देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि, देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि, राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु, राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु, निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षां, निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षां, उत्तंग सौहृद विशेष वशात् प्रगल्भा, उत्तंग सौहृद विशेष वशा प्रगल्भाम देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि राका सुधा किरण मंडल कांति दंडे राका सुधा किरण मंडल कांति दंडे वक्त्रश्रियं चकित चारु चमूरु नेत्रान वक्त्रश्रियं चकित चारु चमूरु नेत्रान राधा प्रसाद निवधानं कला प्रसिद्धा राधा प्रसाद निवधानं कला प्रसिद्धा देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि लास्यो लसद्भुजग शत्रुपतत्र चित्र लास्यो लसद्भुजग शत्रुपतत्र चित्र पट्टांशुकाभरण कुञ्जलिकाञ्जिताङ्गी पट्टांशुकाभरण कञ्चुलिकालिकाङ्गी गोरोचनारुचि विहरण गोभरा गोरोचनारुचि विगर्हण गोरिमाणम् देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि धूर्ते व्रजेन्द्र तनये तनु सुष्ठु वाम्यम् धूर्ते व्रजेन्द्र तनये तनु सुष्ठु वाम्यम् मा दक्षिणा भव कलङ्किनि लाघवाय मा दक्षिणा भव कलङ्किनि लाघवाय राधे गिरं शृणु हितामिति शिक्षयन्ति राधे गिरं शृणु हितामिति शिक्षयन्ति देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि राधाभिव्रजपते कृतमात्मजेन राधामभिव्रजपते कृतमात्मजेन कूटं मनगपि विलोक्य विलोहिताक्षी कूटम मनाग विलोक्य विलोक विलोहिताक्षे वाथंगिभिस्तमिरो चने विलज्जयन्ती वाथंगिभिस्तम अचिरेण विलज्जयन्ती देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि वात्सल्य वृन्द वसतिं पशुपाल राजाः वात्सल्य वृन्द वसतिं पशुपाल राजाः सख्यं शिक्षण कलासु गुरुं सखीना सख्यानुशिक्षण कलासु गुरुं सखीना राधा पल्लव रज जीवित निर्शेषा राधा पल्लव रज जीवित निर्विशेषा देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि देवी गुणै सुललितां ललितां नमामि यां कामपि व्रजकुले वृषभानुजायाः या कामपि व्रजकुले वृषभानुजायाः प्रेक्ष्य सपक्षपदवीम् नुरुध्यमानाम् प्रेक्ष्य सपक्षपदवीमनुरुध्यमानाम् सद्यस्तदिष्टघटनेन कृतार्थयन्ती सद्यस्तदिष्टघटनेन कृतार्थयन्ती देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि राधा व्रजेन्द्र सुतरङ्गमरङ्गचया राधा व्रजेन्द्र सुतसङ्गमरङ्गचया वर्यां विनिश्चितवतीमखिलोत्सवेभ्यः वर्यां विनिश्चितवतीम् अखिल अखिलोत्सवेभ्यः तां गोकुलप्रिय सखी निकुर्मुदाख्याम् तां गोकुलप्रिय सखी निकुरम्बुमाख्याम् देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि देवीं गुणै सुललितां ललितां नमामि देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि देवी गुण सुललिताम ललिताम नमामि देवी गुण सुललिताम ललिताम नमामि 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 हरे कृष्ण सॉरी थोड़े गलतियां होंगे जरा प्रैक्टिस नहीं किया सीधे आके हरे कृष्णा महाराज आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई कमेंट्स करना चाहेंगे आप ललिता देवी के बारे में वैसे नौ बज गए तो अच्छा इसका जो ट्रांसलेशन था वो कहीं चला गया देवीन गुण ही सुललिताम ललिताम नमामि ते मैं ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो कि दिव्य गुणों से संपन्न है। ललिता देवी सदैव श्री राधा मुकुंद के चरणों के पसीने की उपासना करती हैं और बड़े साहस से कार्य करती हैं क्योंकि उनके हृदय में युगल किशोर किशोर किशोरी के प्रति बहुत स्नेह है। मैं ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो कि दिव्य गुणों से संपन्न हैं। उनके उनका मुखारविंद का जो सौंदर्य है वो पूर्ण चंद्रमा के सौंदर्य से भी अधिक है और ललिता देवी की आंखें एक ऐसे हिरणी की आंखों के समान है जो कि बहुत भयभीत हो गई है और वो श्रीमती राधारानी की श्रृंगार करने में बहुत दक्ष है। मैं उन ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो देवी गुणों से संपन्न है। वो एक सुंदर रेशम का वस्त्र पहनती हैं, जिसका जो कि मोर पंख के समान है शिखी पुच्छ की तरह है और उनकी जो शरीर की कांति है वो गोरोचन के तेज को हरा देती है। गोरोचन समझते हैं ना, गोमूत्र के समान के बना हुआ एक धातु होता है जो अलंकार के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। मैं उन ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो दिव्य गुणों से संपन्न है। वो श्रीमती राधारानी को वाम भाव जैसे राजनीति में लेफ्ट विंग राइट विंग होते हैं ना, जो साम्यवादी हैं उनको लेफ्ट विंग कहते हैं और अन्य जो होते हैं जैसे हमारे राजनीति में भी एक पार्टी जो है लेफ्ट विंग है दूसरा राइट विंग है, तो ललिता देवी जो है वो लेफ्ट विंग गोपी वाम प्रकार उल्टा को सिखाती है, राधा रानी को भड़काती है कृष्ण के प्रति और वो क्या कहती है राधा रानी को सिखाती है राजेंद्र तनये तनु सुष्ठु वाम्यम इस धूर्त नंद तनुज को नंद तने को टुकड़ा दो उसे त्याग कर दो। मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय तुम बड़ी अनैतिक कार्य कर रही हो उसको त्याग करो, तुम कमजोर नहीं होना, तुम्हारे भाई मैं कह रही हूं उसकी बात नहीं मानना तो। तो इस प्रकार से श्रीमती राधारानी को श्री कृष्ण के प्रति अड़काती है। तो मैं उन ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो दिव्य गुणों से संपन्न है। उनकी आंखें तो क्रोध से लाल हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि व्रजराज श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को धोखा दे रहे हैं, और उस समय वो तुरंत जाकर श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन बोल देती हैं कि श्री कृष्ण बड़े लज्जित हो जाते हैं। उस समय श्रीमती ललिता सखी के व्यवहार जो बड़ा तीक्ष्ण है, बहुत कभी श्री कृष्ण को ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं कि श्री कृष्ण अवाक्य हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। तो मैं ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो दिव्य गुणों से संपन्न है। वो गोपियों की माता, गोपियों की महारानी यशोदा माता के प्रति स्नेह के आश्रय हैं, और स्नेह सखी भाव की कला को सिखाने की वो अध्यापिका हैं। और ललिता देवी का जो प्रेम श्रीमती राधारानी और कृष्ण के लिए समान है, मैं श्री ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो दिव्य गुणों से संपन्न है। वो हर एक ब्रज गोपी को निवेदन करती है कि वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधारानी के पक्ष में आ जाए, और ललिता देवी वो हैं जो कि श्रीमती राधारानी के हर इच्छा की पूर्ति करती हैं। मैं श्रीमती राधा श्री ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो कि दिव्य गुणों से संपन्न है। जब ललिता देवी ने देखा कि ब्रज में श्रीमती राधा रानी का मार्ग किसी एक व्यक्ति ने रोक दिया है, किसी एक व्यक्ति मतलब कृष्ण ने रोक दिया है, तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो मैं श्रीमती ललिता देवी के चरणों में नमन करता हूं जो कि दिव्य गुणों से संपन्न है। वो हमेशा श्रीमती राधा रानी और ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के मिलन में रमण करती हैं, और श्रीमती राधा रानी के दिव्य सखियों में से गोकुल में सबसे प्रमुख हैं। तो ये हैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित श्री ललिताष्टकम। हरे कृष्ण। ऊंचा गांव में है ना, ऊंचा गांव में उनका जन्म स्थान ऊंचा। वैसे तो वो यावत में रहती हैं, फिर यावत में ससुराल है ना, है ना, ससुराल यावत में है, और मायके तो ऊंचा गांव में है। ऊंचा गांव के पास ललिता कृष्ण मंदिर, शायद अगर हम मार्ग बता पाएंगे, ललिता कृष्ण मंदिर है ना ऊंचा गांव, ललिता मंदिर है, ललिता मंदिर ऊंचा गांव में, बरसाना के पास, बरसाना के पास। ठीक है महाराज, आप कुछ और बताएंगे ललिता देवी के बारे में? षष्ठी छठा दिन नहीं, लेकिन सप्तमी अभी नहीं है। तिथियों और दिवस जो हमारे पाश्चात्य जो कैलेंडर है उसमें, और कभी वैदिक कैलेंडर में दिनदर्शिका में थोड़ा बहुत कभी ओवरलैपिंग हो जाता है, तो इन तिथियों की वजह से कभी षष्ठी और सीधे फिर अष्टमी आए, ये सप्तमी अभी नहीं है। वैसे षष्ठी सप्तमी अष्टमी, लेकिन इस बार षष्ठी के बाद तुरंत अष्टमी, इसीलिए ललिता षष्ठी कहते हैं। यदि राधाष्टमी अष्टमी है, वैसे करेंगे षष्ठी। श्री ललिता देवी आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। श्री ललिता षष्ठी महोत्सव की जय। गौप्यमानंदे। हरे हरे कृष्ण।